Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bulao, hum tumko yog sikhayenge ab sabko. Bina yog ke anand ka anubhav nahi ho sakta hai. Sat chit ka anubhav hota hai श्रवण से, स्वाध्याय से, सत्संग से, और योग से अनुभव होता है आनंद का। उस समय मोहनान जी महाराज थे संयोग से, वो भी थे मंच पर। तो अब मुझे तो सहन नहीं हुआ भाई, कैसे उठपटांगे व्याख्यान, कि हमको टिप्पणी करना पड़ा। हमने कहा कि देखो नारायण, सत चित आनंद तीनों अभिन्न है, इसमें कोई भेद नहीं। तद अभिन अभिन्नत्व तद अभिन अभिन्नत्वम, ये युक्ति है। जैसे ये समझ लो, ये तीन उंगली है ना, इसको तर्जनी बोलते, मध्यमा बोलते, अनामिका बोलते। तो मध्यमा से तर्जनी का भेद है, बिल्कुल साथ में जुड़े। जब इसका इसका भेद है ना, और मध्यमा का इसका क्या नाम अनामिका सा भेद है, तो फिर इसके द्वारा दोनों का भेद हो जाएगा। भले बीच में फासला कर रहा, पर तद अभिन अभिन्नत्व तद अभिन अभिन्नत्वम हो जाएगा। ऐसे सत्य चित आनंद बिल्कुल अभिन्न है। जीवन में सत्य का अनुभव हो गया तो आनंद का भी हो गया। ऐसा नहीं कि सत्य अलग है, चित अलग है और आनंद अलग। जिस प्रकार अग्नि है, तो अग्नि में तीन चीज है, लौहित्य वरण है और दाहकता शक्ति है और प्रकाशपना। ये तीनों अभिन्न है। ऐसा नहीं कि लौहित्य वर्ण अलग हो जाएगा, दाहकता अलग हो जाएगा, प्रकाश करना अलग। तीनों अग्नि किससे अभिन्न है। अग्नि का मतलब लौहित्य वर्ण, प्रकाशपना, जलाना। ऐसे सच्चित आनंद तीनों को अलग नहीं कर सकती, अभिन्न है। बाद में उन्होंने भी समर्थन किया, स्वामी मोहनान जी भी बेचारे बड़े दुखी हो गए। वो इतने बड़े तीन तीन विद्यालय के, वो तो नारायण क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि भेद, इसीलिए यहां कह दिया अद्वयम। सच्चित आनंद में जरा भी एक रत्ती भी भेद नहीं है, तीनों अद्वय है। अद्वय मतलब समझते हैं ना, न द्वय अद्वय ना, न विद्यते द्वयम यत्र, जहां पर द्वैत का नामो निशान नहीं। अद्वैत मतलब जानते हैं, द्विधा वित्तम द्वैतम। द्वैत बोलते हैं कि दो प्रकार में विभक्त हो, इसको द्वैत बोलते। जैसे हम लोगों का मन में द्वैत है ना, एक तरफ आत्मा दूसरी तरफ अनात्मा, तो दो खंड में विभक्त हो इसका नाम द्वैत है। पर आत्मा में कोई विभाजन नहीं, अखंड है। विभाजन शून्य होने से उसको अद्वैत बोलते हैं। न विद्यते द्वैतम यत्र, जहां पर द्वैत का नामो निशान नहीं, वही आप हैं। आप कुछ में अंतर नहीं। जैसे कि सोना यह कह सकता है कि मैं एक मेवा अद्वितीय हूं, मैं ही मुझ में रावण की कल्पना थी, मुझ में राम की कल्पना थी। भले ही व्यवहारिक धरातल पर दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तत्व दृष्टि से देखें तो वही रावण बना था और वही राम बना था। हालांकि दोनों में बड़ा भारी विरोध है, राम और रावण में हर तरह से विरोध है। देखने भी विरोध है, आकार प्रकार में, गुण क्रिया में भी, हर तरह से। और उन दोनों विरोधों का समुच्चय है सुवर्ण में। सुवर्ण दोनों में एक ही था। ऐसे ही जितना भी द्वैत प्रपंच है, सबका अधिष्ठान एक में अद्वितीय आत्मा है, वही मैं हूं। इस श्लोक में अनुभव को बताया। अब आगे चले, श्रुति में आया है कि वाचारम्भणम विकारो नाम देव मृतिका इतिव सत्यम। हाँ, इतिव सत्यम। 20 उच्चारण कर ले, क्योंकि कल पूरा भी कर देना है ना, इसलिए। अणुणीया नहमेव तद्वन् महानहं विषमहं विचित्रम् पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्यमयोऽयं शिवरूपमस्मि अणोणणीया नमेव तद्वन् महानहं विश्वमहं विचित्रम् पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्यमयोऽहं शिवरूपमस्मि अणोणणीयान् सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तद्वन और वैसे ही महानम महान से भी महान विश्वम विचित्र विश्व मैं ही हूँ पुरातनोह मैं पुरातन प्राचीन से प्राचीनतम पुरुष मैं हूँ ईश मैं हूँ शासन करता हिरणमय कार्य स्वयं प्रकाश मैं हूँ शिव स्वरूप मैं ही हूँ। एक हो गया वाच्यार्थ वाच्यार्थ समझते ना यथाश्रुतार्थ जैसा शब्द वैसा अर्थ। अब जो है जरा इसका हम लोग विग्रह विचार करें। नियम है न पदच्छेदो पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपः च समाधानं च व्याख्यानस्य पंचलक्षण पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना और आक्षेप समाधान पांच व्याख्यान के तौर तरीके। पहले पदच्छेद हो गया पदार्थी थोक्ति हो गया। विग्रह का मतलब जानते हैं ना विग्रह मतलब क्या मुझे पता था नहीं बोलेंगे इसलिए पूछा पूछा वही जाता है जो कोई ना बता पाए। विग्रह बोलते हैं वृत्त्यर्थ अवबोधक अर्थम विग्रह वृत्ति की अर्थ को जो बताए ना उसको विग्रह बोलते हैं। लघु कौमुद में सब लिखा है समास के पहले ही कि वृत्त्यर्थ अवबोधको विग्रह वृत्ति के अर्थ को अवबोधक मतलब जो बताए उसका नाम विग्रह है। अब आप कहेंगे वृत्ति क्या लफड़ा है तो वृत्ति बोलते पांच वृत्तियां होती है कृत तद्धित समास एक से सनाद्यंत धातु ये सब वृत्तियां हैं पांच ही हैं पांच से ज्यादा नहीं। कहीं कृदंत है कहीं तद्दित है कहीं समास है एक से और सनाद्यंत धातु है। तो पांचों के अर्थ को जो स्पष्ट करके बताए उसका नाम विग्रह है। जैसे समझने के लिए कौन्तेय शब्द है कौन्तेय ये कौन्तेय जो शब्द है ना ये है आपका तद्धित वृत्ति है। अब इसका विग्रह करना है कौन्तेय का तो हम करेंगे कुंतेर अपत्यम कौन्तेय कुंती के अपत्य संतान का नाम है कौन्तेय इसका नाम तद्धित वृत्ति है ये हो गया आपका विग्रह। शब्द केवल कौन्तेय है ऐसी पार्थ है अपार्थ का वृत्ति होगा पृथा अपत्यम पार्थ पृथा के पुत्र का नाम पार्थ इसको बोलते हैं तद्धित वृत्ति। और कहीं समास वृत्ति होता है राज पुरुष राज्ञ पुरुष राज पुरुष समास वृत्ति है राजा का पुरुष मतलब कर्मचारी। तो विग्रह देखें इसके बाद में वाक्य योजना और पांचवी कसौटी आक्षेप समाधान। तो अणु अणियान लिखा है ना सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा बहुत सूक्ष्म है। व्यवहारिक जगत में हम सूक्ष्म किसे कहते हैं जो जिसका विभाजन न हो जो अत्यंत सूक्ष्म जैसी परमाणु। परमाणु को अणु शब्द से कहते हैं न्यायिक वैशेषिक और यही जगत का कारण है। न्याय वैशेषिक दर्शन में अणु को जगत का उपादान कारण मानते हैं। अणु मतलब कि अंत्या अवयवी हो निरअवयव हो जिसका विभाजन न हो सके इतना ध्यान रखना। न्याय वैशेषिक का परमाणु और ये वैज्ञानिकों का जो परमाणु अलग अलग है परिभाषा अलग अलग। जैसे कबीर की के राम अलग और वैष्णवों के राम अलग और हम लोगों के राम अलग अलग है ना उधर जो है मथुरा वृंदावन के राम अलग हैं, कबीर के राम है जो घट घट वासी वह राम कबीर के, सब तो वही एक ही, पर परिभाषा क्या राम, घट घट वासी राम। और योगियों के राम है रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामा, जिस अखंडानंद परमानंद में योगी रमण करते हैं उसका नाम राम। एक ही शब्द है, सबकी परिभाषा अलग है। और अयोध्या वाले के राम क्या है मालूम है, कौशल्यानंदन को राम कहेंगी, वो आपको नहीं कहेंगे जो घटघटवासी, कौशल्यानंदन राम है। और क्या बच गए राम, मथुरा वाले, मथुरा वाले का राम अर्थ है बलराम दाऊ, कृष्ण के बड़े भाई का नाम है राम, तो है तो शब्द ही। और हम लोग के घरों में राम का अर्थ क्या है, वो जो हमारा बेटा पोता धोता उसको राम कहते, बढ़िया है ना। और इक्की सिक्की बिक्की टिक्की से तो बढ़िया है ना, कम से कम तो डब्लू बबलू ऐसा भी नाम रखते हैं, डब्लू बबलू। ये जहां में पढ़ता था नकाशी में वो गुरुजी के सब बच्चों पोतों का नाम था डब्लू बबलू। अब बताओ बड़े बड़े पंडितों के यहां भी रखते, यहां तो रखें कोई बात नहीं, डब्लू बबलू, इससे तो बढ़िया है ना राम नाम, कृष्ण नाम, श्याम नाम, मोहन नाम, भगवान की स्मृति होगी। ऐसे जो परमाणु शब्द है वह वैज्ञानिकों का अलग है, वो कहते हैं कि हमने परमाणु का विखंडन कर दिया, वो अलग परमाणु। इन लोगों ने नारायण त्रैष्णु को परमाणु माना, विखंडन कर दिया। पर नैयायिक परमाणु उसे कहता है कि जिसका अब टुकड़ा न हो सके, अविभाज्य हो, अंत्य अवयवी हो, निरअवयव हो, उसका नाम परमाणु है। वह जगत का कारण है, वह इंद्रिय का विषय नहीं। नैयायिक क्या कहते, इंद्रिय का विषय नहीं, परंतु बुद्धि का विषय है ना। बुद्धि का विषय नहीं तो कैसे समझेंगे, बुद्धि का विषय। परंतु हमारा जो परमात्मा है ना, अणु से भी अणु उत्तर है। अणु ठीक है, इंद्रिय का विषय नहीं है, निरअवयव है, नित्य है, जो जगत का कारण है। परंतु गीता में भगवान ने कहा ना, मतलब की जगह इंद्रियानि परा न्याहु इंद्रियभ्य परम मन, मनसहतु परा बुद्धे, बुद्धिरात्मा महान पर। बुद्धि से भी सूक्ष्म है परमाणु, कम से कम बुद्धि का विषय है। बुद्धि से समझते हम व्याख्यान करते हैं, पर जो आत्मा है ना बुद्धि का भी विषय नहीं। इसीलिए अणु से अणु कहा, यहां जो लिखा ना अणु अड़ियान, इसका तात्पर्य है कि अणु तो इंद्रिय का विषय न होता हुआ भी बुद्धि का विषय है, जो सृष्टि का कारण है नैयायिक जगत दर्शन से। परंतु हमारी जो आत्मा है ना बुद्धि का भी विषय नहीं, इसीलिए अणु से अणु कहा। खाली इतना याद नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तो कुछ भी हो जाएगा। आगे महान और महान से महान, सबसे महान हम लोग मानते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी से भी बड़ा है जल, जल से अग्नि, वायु, सबसे बड़ा महान हम लोग बोलते हैं आकाश को, कहते आकाश से भी बड़ा है, हाँ इसीलिए उसका नाम आत्मा है महान। हम विश्वम हम विचित्रम, ये पूरा विश्व जो विचित्र है वह तद रूप में मुझ में ही कल्पित है। पुरातनो हम, किसी ने कहा ये तो अभी आजकल का है, लोग बोलते ना कि ये तो आजकल के हैं, ऐसा नहीं, पुरातन है, बहुत पुराना, उससे कोई पुराना हो नहीं सकता, वो काल का भी काल है, जहां किसी की पहुंच नहीं है। पुरुषो हम, अब सांख दर्शन वाले आए बोले क्या पुराने चीज में पड़े हो, आओ हम तुम्हें बिल्कुल नई नई बातें बताते हैं। तो कहा कि नहीं, पुरुष भी मैं ही हूं, वो सांख का जो पुरुष है ना वो पुरुष रूप में ही हूं। अब ईशो, अब आ गए जो है ना ये जो व्यवहारिक जगत वाले, बोले जगत का शासन है, राजाधिराज है, कवा भी मैं ही हूं ईशा। हिरण्यमयोयम, तत्व ज्ञानी के लिए हिरण्यमय, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश है। तत्वेत्ता के दृष्टि में जो स्वयं प्रकाश है वह मैं ही हूं। आगम वालों के लिए शिव है, आगम वाले उसको शिव कहते हैं, कहते शिव रूपम अस्मी, वह शिव स्वरूप भी मैं ही हूँ। ये जितना चराचर जगत है तद रूप में मैं ही हूँ। वास्तव में देखा जाए इस श्लोक में बड़ा विरोधाभास है, कहाँ अणु कहाँ महान। अणु मतलब सरसों पकड़ लो समझने के लिए, मान लो सरसों एक छोटा अणु है, और महान मान लो बड़ा भारी पत्थर, दोनों में समानता हो सकती। सरसों और पहाड़ में बड़ा विरोध है, तो करे दोनों मैं हूं। ये जहां विरोधों का समन्वय, गीता में ऐसी बातें कई जगह आई है, पर पहले मानना पड़ता है ना, इसी का अध्यारोप अपवाद कहते। पहले अणु से अणु, फिर महान से महान। जैसे मानो किसी को आप मैथ पढ़ा रहे हैं, गणित, और कहा कि भाई मान लो तुम्हारे जेब में 25,000 हैं, 25,000 में 10,000 दे दिया डॉक्टर अतुल साहब को, 10,000 दे दिया मुझे, और 2,000 दे दिया सोलंकी को, कितने बचे हैं? पर वो लड़का तार्किक हो, बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पहले लाओ 25,000 जेब में, फिर बताऊंगा कि 10 किसको देना है, 3 किसको देना है। तो उसको गणित समझ में आएगा नहीं आएगा? पहले मानना पड़ेगा ना कि सपोज मान लो जेब में 25,000 हैं, 10 किसी और को दिया, 10 किसी और को, 3 किसी और को, तो कितना बचा? 2 बचा। ऐसे पहले जो है ना जगत की मान्यता आरोप करते हैं, आरोप करके बोलते कुछ नहीं। ऐसे लड़के ने कहा ना कि जेब में कुछ भी नहीं, पहले ही बोल दे कुछ भी नहीं तो फिर गणित क्या सीख पाएगा। ऐसे देव गीता में कई जगह 9वें अध्याय में आया है ना, अमृतम च मृत्यु च सद असच्चाहम अर्जुन। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि मैं ही अमृत हूँ, मृत्यु हूँ, और सत भी हूँ असत भी हूँ। और वहीं आगे चल के भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं अनादि मत परम ब्रह्म न सत न सद उच्यते। कितना विरोध है, कहते न सत मैं हूँ न सद हूँ। 9वें अध्याय के कितना श्लोक है, 19 श्लोक में भगवान ने कहा मैं सत भी हूँ असत भी हूँ, और 13वें अध्याय के 12 श्लोक में भगवान ने कहा कि न सत न सद उच्यते। भगवान होते ना तावलो जरूर पूछते, इतना जो है विरोधी बात है। कहीं कहते हो कि मैं सत असत हूँ, फिर बोलते मैं सत नहीं असत नहीं। तो वास्तव में इन सब दोनों को लेकर अधिष्ठान तक पहुंचाने के लिए, जैसे मान लो कोई रबड़ का गेंद फुटबॉल हो, उसमें एक तरफ ए लिखा दूसरी तरफ बी लिखा, एक तरफ लाल रंग से रंगा दूसरी तरफ हरा रंग, गेंद होते ना। अब जो रबड़ का गेंद एक तरफ ए दूसरी तरफ बी है, एक तरफ लाल एक तरफ हरा, तो वह गेंद कह सकता है कि मुझ में दोनों है, लाल भी हरा भी, मुझ में ए भी है बी भी है। और जब पिघला दिया रबड़ रबड़ आ गया तो कुछ भी नहीं, ए भी नहीं बी भी नहीं। तो जगत काल में सत असत सब कुछ वही है, और अधिष्ठान दृष्टि से केवल एक में अद्वितीय चैतन ही चैतन है। जैसे वहां केवल रबड़ ही रबड़ है ना, कुछ भी नहीं, न गेंद है, न आकार, न प्रकार, न ए न बी, न लाल न पीला, कुछ नहीं। ऐसे अधिष्ठान दृष्टिकोण से न सत है न सत है कुछ भी नहीं, और सृष्टि काल में उसी में सत असत का आरोप है। यही तो वेदांत है ना, विरोधाभास से भरा पूरा। नहीं समझने से लगता है कि ये वेदांत जो है बड़ा विलक्षण। एक और कर लेते हैं, अपाणि पादो अहम अचिंत्य शक्ति पश्यामि चक्षुष शृणोमि कर्णः अहम बीजानाम विविक्त रूपो न चास्ति वेत्ता मम चित सदाहम् अपाणिपादोहम अचिंत्य शक्ति पश्याम्य चक्षुष शृणोम्य कर्णः अहम् बीजानाम् विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम् अपाणिपादोहम अचिंत्य शक्तिः। अब किसी ने कहा भाई कैसे उसको जाने, पैर से चलकर रामेश्वरम पहुंच करके या हिमालय की ऊंचाई की चढ़ाई करके उसको कैसे प्राप्त करें। तब का पाणी पादो हम, न उसमें पाणी है न पाद है, हाथ पैर दोनों भी नहीं, कुछ भी नहीं। अचिंत्य शक्ति, चिंतन भी नहीं कर सकते, अचिंत्य शक्ति मत। पश्या में चक्षु, बिना आंख के देखता है, सशिणो में कर्म और बिना कान के सुनता भी है। अहम बिजाना विविक्त रूपो, और विविक्त नाना रूप को वही जानता है। न चाहते वेत्ता, उसका कोई ज्ञाता नहीं है। चित सदाम, जो हमेशा चैतन्य स्वरूप है, वह जो चैतन्य है, आत्म रूप है। जैसे विद्युत है, विद्युत को कोई हाथ नहीं, पांव नहीं, फिर भी कहां से कहां पहुंच जाती। विद्युत ऊर्जा है, उसको हाथ पांव नहीं, हम लोगों को पहुंचने में समय लगेगा। जरा सा स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। अब कोई पूछे कि भाई विद्युत क्या है, ये जो टीवी लाइट लंबा रडार, यह विद्युत है? तो बोलेंगे यह नहीं है। फिर क्या है? तो बोलेंगे जिससे रोशनी आ रही वह विद्युत। ऐसे ही बोला कि भाई दूसरी बताओ विद्युत का लक्षण, तो कहा आपने जिससे आवाज आ रही, शब्द सुनाई पड़ रहा वह विद्युत। अब पकड़ लिया स्पीकर को, बोले यही विद्युत है? बोला यह नहीं है, बल्कि जिससे आवाज आ रही। तो देखो ये जो आवाज है ना, आवाज जिससे आ रही वह विद्युत है, स्पीकर नहीं है। इसके माध्यम से आवाज आ रही, पर यह विद्युत नहीं है। विद्युत का न कोई रंग रूप आकार प्रकार कुछ नहीं है। ऐसे वह जो चैतन्य है ना, उसको पाणी पाद नहीं, जाने के लिए उसको पैर की जरूरत नहीं, क्योंकि परिच्छिन्न व्यक्ति को गमनागमन के लिए पाद की जरूरत है। वह तो अपरिच्छिन्न आकाश के समान व्यापक है, इसलिए पाणी पाद की जरूरत नहीं। या ऐसा समझो कि सभी की पैर में समझो वही अनुसूत है, सभी की आंख से वही देखता है, सभी के कान से वही सुनता है, सभी के भुजा से वही लेन देन करता है, सभी से जीव, सभी के जीव से वही रस का भोगता है, क्योंकि सर्वात्म रूप में वही है। तो वास्तव में ज्ञानी वैसा अनुभव करता है कि मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। अहम बिजाना विविक्त रूपो, ये जो नाना प्रकार का रूप है, उस रूप को मैं ही जानता हूं। आप उसको जान नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वह ससीम है। आंख नाक कान चाहे कुछ भी, वो ससीम है, परिचिन्न है, माइक है। और वह जो चैतन्य माइक है, असीम है, इसलिए ससीम माइक यंत्रों से असीम अमाइक तत्व को जान नहीं सकते। फिर कैसे जानना है? तो कठोपनिषद में कहा, यमेव ऐसा विवृणुते तेन ऐसा लभ्यते तनुम स्वाम, विवृणते तनुम स्वाम। जो इसका वरण कर लेता है, जो इस चैतन्य का, परमात्मा का अपने जीवन में चुनाव कर लिया, जैसे कि आपके सामने 50 प्रकार के संसाधन है, तो मास्टर कहता है कि चुनाव कर लो, तुम्हें जो है ना वैज्ञानिक बनना है, कि जो है ना टीचर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि व्यापारी बनना है, कि जो है ना योद्धा बनना है, सब रखा है। यदि किसी एक विषय का चुनाव कर लिया, उसी में लग जाता है। ऐसे संसार में बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें हैं, आपने उसमें से परमात्मा का वरण कर लिया, आत्मा का, तेनैव लब्ध है, उससे लब्ध है। अविवृणते तनुम स्वाम, तनुम का अर्थ है स्वरूप को, अपने स्वरूप को विवृणते मतलब की अभिव्यक्त कर देता है। तो पहले हमको चुनाव करना पड़ेगा, वरण करना पड़ेगा, इतना ही खाली करना आपको। आगे का सारा काम तो स्वयं ही, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है, चित सदाम चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप है। अब शेष कल श्रवण कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।